ಹರಿ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಯಶೋದನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಗೋಪೀ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರೆ ಹರಿ ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರೆ ಹರಿ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರೆ ಹರಿ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರೆ ಹರಿ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರೆ ಹರಿ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರೆ जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जीथय गौर हरि बोल नीथय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रज का आचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमात श्री डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की समवेद गौर भक्तरुंद की इथाई गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा द बिगिनिंग ऑफ लास्ट वीक हिंदी ये हफ्ते के पहले कुछ भक्तों ने मुझे निवेदन किया कि आप तुकाराम बीज मतलब तुकाराम के तिरोभाव के बारे में बताइए, लेकिन उसके बाद कोरोना वायरस चल रहा है तो कोई भक्तों ने बोला कि आप कोरोना वायरस के बारे में बोलिए तो दोनों के बारे में एक मिलाकर बोलना चाहता हूँ। वैसे तो कोरोना वायरस हम तो कोरोना कहते हैं उसको, कोरोना बोलने की जरूरत नहीं है, तो इसमें कोई विशेष नहीं है। भगवान बोलते हैं दुखालयम शाश्वतम। ऐसे ही एक बार बद्रीनारायण महाराज वृंदावन में क्लास दे रहे थे, बोलते जब आप रेगिस्तान जाते हो When you go to desert, you cannot complain why there is sand everywhere. जब आप रेगिस्तान में जाते हो आप क्या बोल सकते हो उसको, क्या तकरार मतलब, यू कैनॉट कंप्लेन, शिकायत नहीं कर सकते सब जगह रेती क्यों है. सो वेन यू गो इन ओशन यू कैनॉट कंप्लेन वाई देर इज वाटर एवरीवेयर. सो आप समुद्र में जाते हैं तो सब जगह पानी क्यों है ऐसा शिकायत नहीं कर सकते. उसी समय भौतिक दुनिया में मृत्यु क्यों आता है वो कैसा भी आने दो शिकायत नहीं कर सकते, जैसा है उसको स्वीकार करना पड़ेगा. मेरी दृष्टि से तो ये कोरोना वायरस सब जगह ब्राह्मणिकल स्टैंडर्ड प्रसारित कर रहा है. ब्राह्मणिकल स्टैंडर्ड मतलब क्या है, पहले जब कोई भी घर से बाहर से आता था वह हाथ पांव धो के ही घर के अंदर आता था. अभी तो सबको पता जा रहा है कि 20 सेकंड्स आपका हाथ धोना चाहिए, तो पहले से ही है, ऐसा कोई नया चीज है, इसको ब्राह्मणिकल स्टैंडर्ड कहते हैं. तो ब्राह्मणिकल स्टैंडर्ड से अगर कोई रहेगा तो इस वायरस का कोई समस्या नहीं है. और आज भी इस वायरस से भी ज्यादा लोग अन्य कारणों से मर रहे हैं, तुम उसके लिए कोई भी नहीं बोलता है. तो भगवान के जो भक्त है उनके लिए इसके लिए तो युधिष्ठिर महाराज ने बताई है पहले, यानी आहनी भूतानि गच्छन्ति यह यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति. बचे हुए क्या सोचते हैं, सोचते हैं क्या उसके बारे में, नहीं सोचते हैं. तो भक्तों की दृष्टि से इसके कोई ज्यादा महत्व देना नहीं चाहिए. तो इसके थोड़ा सा सिमिलर इंस्टेंस 1992 में अपने सातारा के पास एक गांव में भूकंप हो गया था, क्या नाम था उसका, खिलारी के पास. तो दूसरे दिन राधानंद महाराज आदिकेश्वर प्रभु के घर में क्लास दे रहे थे. तो महाराज ने मुझे बुलाया, उस समय ब्रह्मचारी था, बोलते कि आप टीवी पे क्या चल रहा है देख के आ जाओ. मैं तो देख, महाराज इतने बोलते थे कि टीवी नहीं देखना चाहिए ब्रह्मचारी को, तो बोला गुरु का आदेश है, क्योंकि वहाँ हम तो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते थे, हमको पता भी नहीं था क्या चल रहा है दुनिया में. तो मैं गया तो न्यूज़पेपर ऐसा टीवी पे देखा तो न्यूज चल रहा था कि 40,000 लोग मर गए आज के कोरोना से ज़्यादा भी, 40,000 वो भी एक रात में. और उस समय मैं जब न्यूज़ देख रहा था वो दो इंस्टेंसेस बता रहे थे कि एक कैसे बच गया और दूसरे कैसे मर गए. मतलब एक फैमिली जो थी वो जो अपने सर्प के, उनके घर में सांप आ गया था, सर्प आ गया था, तो बड़ा सर्प था इसलिए सब लोग उस दिन, वो सर्प है इसलिए सब लोग बाहर सोए थे, इसलिए सर्प मर गया और बाकी के बच गए. और दूसरा जो एक इंसिडेंट्स बता रहे थे कि एक 3 महीने का बच्चा जिसको वो पालने में रखा था, बाकी सब जमीन में सोए थे, जमीन पर सोए थे, तो वो बच्चा बच गया बाकी सब मर गए थे. तो ये इंसिडेंट्स मैंने देखा उस न्यूज़ में 5 मिनट. और तब तक महाराज का जय राधा माधव खत्म हो गया और मैं बाद में आके महाराज को जो मैं देखा बताया. तो ये वैष्णव का दृष्टिकोण देखिए. तो महाराज ने क्लास टू शुरू किया तो फर्स्ट वी शुड ऑफर आवर प्रेयर्स टू ऑल द पीपल दोज हु हैव लेफ्ट देयर बॉडीज, बट हमें ये सोचना चाहिए कि वो सब हमारे एक शिक्षा गुरु है, वो हमको जाते जाते सिखा के गए कि इस भौतिक दुनिया कितनी पदम पदम यत विपदम नतेशाम, ये भौतिक दुनिया कैसे हर क्षण यहाँ डेंजर है. ये खाली कोरोना वायरस से नहीं है, हर प्रकार से डेंजरस है. और कल मैं, क्योंकि मैं अमेरिका जा रहा हूँ अभी, तो मुझे न्यूज़ देखना पड़ता है, तो वो न्यूज़ में बता रहे थे कि कोरोना से भी ज़्यादा ट्रेस है कोरोना आने का ट्रेस. कोरोना से जितना ट्रेस नहीं है वो सब लोग डर के उससे स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है अमेरिका में. और अमेरिका में कल रात को स्टेट इमरजेंसी, मतलब कंट्री इमरजेंसी डिक्लेयर की है. तो देखिए लोग मृत्यु को इतना डरते हैं लेकिन आज भी कोई सीरियस नहीं है, इससे कैसे बच सकते हैं. वो सब लोग बाकी सब साबुन लगा रहे हैं, सैनिटरी लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी आज भी जपा करने के लिए नहीं सोचता है. यही एक मृत्यु से बचने का तरीका है. तो ये मेरे दृष्टिकोण से कोरोना का थोड़ा सा अनुभव, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं. तो एक दिन हमको छोड़ के जाना ही है. तो तुकाराम का जीवन देखे कैसे गए, सबको जाना ही है. तो उस भाव में जाने का किस प्रकार से तुकाराम इस भौतिक दुनिया को छोड़े, तो उसके केवल मृत्यु का क्षण नहीं है, उनका पूरा जीवन ही वैसा है. तो इसलिए पहले तुकाराम के जब हम तिरोभाव के बारे में सोचते हैं तो हमें पहले सोचना है उनके आविर्भाव के बारे में। तो तुकाराम की जीवन की एक खासियत है कि उन्होंने खुद अपने जीवन के बारे में लिख के रखा है, वो किस लिए आए, मतलब किस लिए उनका जन्म हुआ और कैसे वो जा रहे, इससे लेके उनके जीवन में क्या क्या हो गया, इसके बारे में वो खुद वो लिख के रखे हैं। तो इसलिए हमें कोई उसके बारे में तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। तो आए कैसे, तो इसके बारे में स्वयं तुकाराम बोलते हैं, अभी थोड़ा मराठी रेफरेंस देना पड़ेगा। धर्माच रक्षण करने पाखांडा खंडन विजयवाड़ वावे नाम हेचे अम्मा काम। तो मैं इसलिए आया क्योंकि प्रोटेक्ट द रिलीजन, मतलब धर्म का रक्षा करने के लिए, और पाखांडा खंडन वट एवर द रिलीजियस प्रिंसिपल्स आर देयर, मतलब अधर्म जो है उसका खंडन करने के लिए मैं आया। और ये कैसे मैं किया, हेचे अम्मा करने काम, ये मेरा काम कैसे मैंने किया, विजयवाड़ वावे नाम, हरे के हृदय में हरे कृष्ण महामंत्र का बीज रोने के लिए मैं आया हूं। तो ये पर्पज है उनका, इसलिए वो आए हैं। तो दूसरे और एक अभंग में कहते हैं, अमी वैकुंठवासी आलो याची कारणासी बोली ले जे ऋषि सास भावे वर्तव्या। मैं तो वैकुंठ से आया हूं, अभी हम सब लोग वैकुंठ से आए हैं, लेकिन कौन बोल सकते हैं ऐसे, फिलोसॉफिकली हमको मालूम है लेकिन कौन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, लेकिन तुकाराम को मालूम है, बोलते कि हम वैकुंठ से आए हैं और किस लिए, याचिकारणा से, किस काम के लिए, बोली ले जे ऋषि, मतलब व्यासदेव और उनकी परंपरा में जो बोला है, साच भावे वर्तव्य, खाली बोलने के लिए नहीं, साच भावे मतलब उसका अनुभव करके बोलने के लिए मैं आया हूं, साच भावे वर्तव्य। और अर्थे लोपली पुराणे नाश केला शब्द ज्ञाने विषय लोभी मने साधने बुड़विली। वो कहते हैं कि शास्त्र जो है पूरे एक एक वाक्य शास्त्र का ये हमको आध्यात्मिक साक्षात्कार दे सकता है, लेकिन नाश केला शब्द ज्ञाने, कलयुग में ऐसे जो शास्त्र है खास करके गीता और भागवत के बारे में बोलते हैं, नाश केला शब्द ज्ञाने, लोगों ने, और जो सही भक्त नहीं है, जो अभक्त है, उन्होंने अपने अर्थ उसको लगाए हैं नाश केला शब्द ज्ञाने। और ये किस लिए किया है, विषय लोभी मने, मतलब लोगों को कलयुग में ज्यादा काम वासना से उनके मन भरे हुए हैं, और शास्त्र को भी अपनी काम वासना को पूर्ति करने के लिए लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। और तथाकथित गुरु और साधु, ये भी इन शास्त्रों का किस प्रकार से अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करना चाहिए ये सिखाते हैं। तो इसका खंडन करने के लिए परंपरा में जो ज्ञान आया है उसका, पिटू भक्तीचा डांगोरा कळी काळासी धरारा, तुका म्हणे करा जय जयकार आनंदे, ही पिटू भक्तीचा डांगोरा। सो टुडे इज लाइक ए व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम, प्रीवियसली पिटू मीन्स दे यूज्ड टू हैव वन ड्रम काइंड ऑफ ए थिंग एंड दे विल गो इन द कॉर्नर्स एवरीवेयर इन द विलेजेस एंड दे विल से टुडे इन द इवनिंग देयर इज ए प्रोग्राम, आज शाम को इस मंदिर में एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, भागवतम है या कथा है, आप सब लोग आइए। दोस्तों कहते पिटू भक्ति का, मीन्स इन वन सेंस ऐसा बोलना समझना चाहिए कि हम भक्ति का प्रचार करेंगे, क्योंकि कली काला सी दरारा, इससे दो डरते हैं, कली मतलब कलियुग और काल मतलब टाइम। जो भक्ति करता है उसको काल और कली दोनों के डरना नहीं चाहिए, कली काला सी दरारा, ये उनके हृदय में डर निर्माण करता है, ये भक्ति का महिमा है। तो फिर से यही है, काल मृत्यु आ गया तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कलियुग आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भक्ति, भगवान की भक्ति है, ये इस सब ये दुष्परिणाम है कलियुग के और काल के, उससे परे लेके जाता है। तो इसका प्रचार करना जरूरी है और इसके लिए मैं आया हूं। तो अपना ऐसा नहीं है कि महाराज कहते हैं तुकाराम कि मागे जब बहुत जन्मी आमी हे ची करता आलो आमी, ये पहले भी ऐसा नहीं कि मैं पहले ही आया हूं, ये पहली बार मैं आया हूं, मागे बहुत जन्मी प्रीवियसली आल्सो, पिछले जन्मों में भी अनेक बार मैंने अवतार धारण किया है और यही सेवा की है कि मैंने भगवत भक्ति का प्रचार किया है। तो केवल अपना एक जन्म ही नहीं, अपने पिछले जन्म भी वो जानते हैं, और उनका आध्यात्मिक जो उनका स्वरूप है उसके बारे में वो कहते हैं कि अमी हरिचे सवंगड़े, वो अभिमान से कहते हैं कि हम भगवान के पार्षद है। ऐसा तो आचार्य लोग या कोई शास्त्र हमारे में आचार्यों ने नहीं लिखा है, एक ही है केवल भक्ति विनोद ठाकुर अपना स्वरूप बताते हैं, और बाकी आचार्य लोग दूसरों का स्वरूप बताते हैं लेकिन खुद का कभी नहीं बताए। लेकिन तुकाराम खुद का स्वरूप बताते हैं, अमी हरिचे सवंगड़े, मैं हरि का पार्षद हूँ। और बाद में कहते हैं कि मैं जब कृष्ण थे तो उनके साथ मैं उनके गोपाल गायों के साथ चरने के लिए जाता था, रामायण के समय में मैं बंदर बन के आया अंगद, वो ऐसा वर्णन करते हैं। तो ये उनका स्वरूप है। तो ये जानना पहले जरूरी है कि किस प्रकार से उनका भगवान से कभी भी वो क्या है अलग नहीं हुए हैं, और भगवान से ऐसा नहीं है कोई इस भौतिक जगत में आए तो हालांकि तो व्यवहार तो कर रहे हैं सामान्य व्यक्ति के जैसा, लेकिन ये अगर हमें स्वरूप ध्यान में रखेंगे तो सामान्य दिखने में है, क्योंकि सामान्य की तरह उनका नाम है, सामान्य की तरह उनका व्यवसाय है, सामान्य की तरह उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, आश्रम गृहस्थ आश्रम में है, तो ये सामान्य की तरह है। तो उनकी असामान्यता कहाँ है, उनकी भावना में है कि किस प्रकार से वो यहाँ पर आए। तो इसके बाद में उनके चरित्र में वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ये सोच रहे हैं वैकुंठ में, तो अपने पार्षदों को बुलाते हैं, इष्टगोष्ठी चल रही है कि अभी कलयुग घोर, मतलब इसका बहुत कलयुग का संकट आ रहा है, और लोग मुझे बोलते जा रहे हैं, तो फिर से याद कराने के लिए मुझे किसी को भेजना है, वो लोग कौन जाने के लिए तैयार है। तो वैकुंठ में तुकाराम हाथ ऊपर कर दे कि मैं आपकी सेवा करने के लिए जाऊंगा। तो ये उनका स्वरूप है, तो मैं जाऊंगा। तो ये भगवान की आज्ञा से आए हुए हैं। श्री प्रभुपाद भी ऐसा ही बताते हैं कि मैं इधर आने की इच्छा नहीं करता था लेकिन भगवान ने मुझे भेज दिया इधर प्रचार करने के लिए। तो सेम वही उसी प्रकार तुकाराम महाराज भी बोलते हैं कि भगवान की इच्छा से वो यहाँ प्रचार करने के लिए आए। तो ये तो सामान्य जैसे आते हैं ये देहू में, यहाँ से 30 किलोमीटर ये छोटे से गांव में उनका जन्म होता है। तो उनके पिताजी है वो इतने रईस थे कि उस समय उनका जागीरदारी कहते हैं मराठी में उसके, उनकी प्रॉपर्टी थी 75 लाख। दिस इज इन 1608 में वो आविर्भाव उनका हुआ। तो उनके पिताजी का ईयरली इनकम था 75 लाख रुपए, उसकी प्रॉपर्टी थी और इनकम इतना इनकम था। और आज भी आप देखिए जाइए देहू में जब जाएंगे तो उनका जो घर है वहां से लेके मंदिर तक इतना बड़ा उनका घर था, वाड़ी थी उनका बड़ा, इतना बड़ा घर था। तो विठल डुंगड़े का मंदिर है उनके घर का एक भाग था, इतना बड़ा घर उनका था। तो लेकिन तुकाराम महाराज के एक अभंग में रहते हैं, ये भौतिक दुनिया कैसी है, एक कोयले के समान है, कोयला आप कितना भी घसो वो कभी व्हाइट मतलब सफेद नहीं होगा। उसी प्रकार इस दुनिया को आप कितना भी सुधारने का प्रयास करो ये आपको दुख ही देगी, दुख ही देगी। ये इनका उनका क्या है, ये अनुभव है। तो उसी प्रकार उनके जीवन में जो है वो जब केवल 16 साल के थे तो उनके पिताजी ने उनको अपने जागीरदारी सब 75 लाख रुपीज, उस समय 75 लाख का ये सब कारोबार जो है उनको सौंप दिया। और उसके बाद केवल एक वर्ष में उनके पिताजी का मृत्यु हो गया। पिताजी जाने के बाद 6 महीने के बाद उनकी माता का भी देहांत हो गया। और ये दोनों जाने के बाद उनका बड़ा भाई सावजी, ये भी जो है उसकी पत्नी भी जो है वो भी छोड़ के चली गई, निधन हो गया। और ये तीनों जाने के बाद सावजी घर छोड़ के वो काशी यात्रा गया, मथुरा गया, भगवान का ध्यान करके भगवान का स्मरण करके उसी धाम में रहने के लिए गया। तो पूरा जिम्मेदारी आ गया, ये केवल 2 वर्ष में इतने सब लोग छोड़ के चले गए। उसके बाद बहुत बड़ा ड्रॉट, क्या कहते हैं हिंदी में, सूखा आ गया, अकाल आ गया। और इनका जागीरदारी मतलब कैसे, उनका ग्रोसरी का दुकान था, धन धान्य बेचने का, धन धान्य बेचने का दुकान, और दूसरा सबसे बड़ा साहूकारी का धंधा था, लोगों को उधार में पैसे देते थे। तो ऐसी अवस्था में, और ये दोनों भी व्यवहार, उनके पीढ़ी जात, उनके पिताजी सब लोग ऐसे करते थे, ये वैष्णव जैसे करते थे। अभी वैष्णव कैसा व्यवहार करते हैं, इससे फायदा लेते थे लेकिन ज्यादा नहीं, ज्यादा फायदा नहीं। और इधर टेस्ट है, ये जब अकाल आ गया तो उस समय क्या हो गया कि लोग दिए हुए पैसे वापस नहीं करेंगे, क्योंकि कोई उत्पन्न ही नहीं है, तो उन्होंने वापस नहीं किया। तो उस समय भी उन्होंने अपना ब्याज बढ़ाया नहीं। अभी किधर भी जाओ लोग क्या करते हैं, तुरंत ब्याज बढ़ाते हैं, और किसी भी चीज की कमी हो उसका तुरंत क्या होता है, 10 गुना। आजकल सब जगह कोरोना की वजह से क्या बोलते हैं उसको, मास्क की इतनी, 50 रुपए का मास्क 500 रुपए में बिका जा रहा है। ये फायदा लेने का क्या होता है, वो लोग ऐसा शोषित करते हैं, क्या बोलते हैं, दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट। तो लेकिन ये इतना अकाल आ गया, फिर भी उन्होंने अपना ब्याज नहीं बढ़ाया, और अपने पास जो धन धान्य था उसका कीमत नहीं बढ़ाया, उसी कीमत पे उन्होंने लोगों को दिया। तो ये एक बरस ये पैसा आया नहीं लोगों से, और देना पड़ा, तो उनका प्रॉपर्टी कम हो गया। दूसरे साल उससे भी ज्यादा अकाल आ गया, और तीसरे साल ऐसा हो गया कि तुकाराम को खाने के लिए कुछ नहीं था, वो सब चला गया, मतलब उदार वृत्ति थी, सब दे दिए, एक्सप्लॉइट नहीं किया, किसी को छूसा नहीं पैसे के लिए या किसी के लिए। तो इसलिए तीसरे बरस अकाल आ गया, तो पूरी प्रकार उनका जो पूरा प्रॉपर्टी था वो सब कुछ चला गया, उसमें लोगों ने पैसे वापस नहीं किए। उनके पास जो था, अगर कोई गरीब आ गया पैसे नहीं है तो उसको धान्य ऐसे ही दे दिया, ऐसा नहीं सोचा कि मेरे फैमिली की मैं रखूं और इनको नहीं दे दूं, ऐसा नहीं किया। और इसी वजह से उनकी दो पत्नियां थी, उसकी पहली पत्नी का देहांत हो गया, उसके बाद उनके एक पहला जो लड़का था उसका भी देहांत हो गया। ये केवल 3 वर्ष में उल्टी परिस्थिति हो गई, जो 75 लाख की जागीरदारी, 3 वर्ष ने सब कुछ चला गया। तो इसके बारे में उनका अनुभव देखिए, हमारी कृष्ण भावना की, खास करके जो इमेच्योर है उनकी कृष्ण भावना की क्या कहते हैं उसको, एक्सपेक्टेशन या अपेक्षा, कृष्ण भक्ति में आने के बाद सब लोग सोचते हैं कि मेरा अच्छा हो जाएगा, कृष्णाज मर्सी, इज ऑल कृष्णाज मर्सी। तो व्हाट इज कृष्णाज मर्सी, तुकाराम से सीखना चाहिए हमें। ये मैं ज्यादा कोई इमेच्योर है तो उनके सामने नहीं बोलता हूं, लेकिन आप भागवत में बैठे हैं, इस्कॉन के डिवोटीज है, मैच्योर है, इसलिए मैं बोलता हूं, नहीं तो ये बोलेंगे तो सब लोग डर के भक्ति छोड़ जाएंगे। ये तुकाराम महाराज का रियलाइजेशन बताता हूं कि बड़े झाले देवा निगाले दिवाड़े, वो कह रहे हैं कि मेरा धंधे में नुकसान हो गया, अच्छा हो गया भगवान। तो ऐसा कोई सोचेगा क्या, कोई नहीं सोचेगा, मेरा अच्छा हो गया, बड़े या दुष्काले पीड़ा के लिए, इट इज गुड, अच्छा हो गया, इस अकाल से, अकाल ने मुझे तकलीफ दिया
के लिए प्रसाद अर्पण करते हैं 5001, तो आपको स्पेशल गिफ्ट मिलेगा चैतन्य चरितामृत हरि बोल, उसके साथ ही ये भी आगे बैठे हैं, इनादर भी मिलेगा, बाजी को
जाता है। लेकिन तुकाराम महाराज कहते हैं कि अनुतापे, ये सब जो मेरे को तकलीफ जो हो रही थी भौतिक प्रकृति की, इससे मेरा चिंतन
भक्त चढ़ाई, तो हमारे भी 1000 तो यज्ञ में आचे जी आदि हमें लाभ, बाजी सुख समृद्धि जाते तो जाके एक सर आगे खड़ा कर रहे हैं, जब हम बाकी अपनी आगे मुहान जाती है, तुम्हें एक शराब की जो है अधिक में बलि, तो
संसार को मैं एक वमन की तरह, वोमिट की तरह देखने लगा। बड़े झाले देवा बाइल कर्कश, उनकी दो पत्नियां थी, पहली मृत्यु हो गई, दूसरी जो है वो शी वॉज नॉट सपोर्टिव, मतलब तुकाराम की भक्ति के लिए वो सहायता नहीं करती थी, और घर में उनको बहुत सी वॉज वेरी इरिटेटिंग आज के दुनिया में शब्द में, और नैगिंग, घर में आने नैगिंग, ये दो शब्द है अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, इरिटेटिंग मतलब बहुत कर्कश कैसा है, चिड़चिड़ चिड़चिड़, और नैगिंग मतलब ये करो ऐसा करो ऐसा करो, नैगिंग। तो ये दो वो पत्नी का क्वालिफिकेशन क्वालिटीज थे। तो तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, बरे झाले देवा बाईल कर्कश, इट इज गुड दैट माय वाइफ इज इरिटेटिंग एंड नैगिंग, मेरी पत्नी ये कर्कशा है, ये ऐसी है, ये अच्छा है, बरी है दुर्दशा जनामाजी, और पूरे दुनिया में भी मेरा क्या हो गया, इंसल्ट हो गया, बरे झाले जगी पावलो अपमान, अच्छा हो गया पूरे दुनिया में मेरा इंसल्ट हो गया, इंसल्ट हो रहा है, क्योंकि पैसा जब तक रहता है सब सम्मान करते हैं, पैसा नहीं है तो कौन सम्मान करेगा, लोग अपमान करेंगे। तो कोई 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 लोग तुकाराम व्यापार भी करते थे तो उसमें नुकसान ही होता था, ऐसा स्वभाव रहेगा कि कितना माल का प्राइस क्या है, तुकाराम कहते थे कि जितना आपको चाहिए उतना दे दो, ऐसा व्यापार करेंगे तो फायदा नहीं हो सकता है, तो उसका नुकसान ही होता था। तो लोग उसके जो व्यापारी मित्र थे वो उसको आके बोलते थे तुकाराम को और उसकी पत्नी को, ये दिन रात ये विट्ठल का नाम कृष्ण का नाम लेता है, इसका मन ही धंधे में नहीं है तो कैसा ये बिजनेस करेगा। तो लोग उसका अपमान करने लगे, ये बेकार है, इसको धंधे का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान धंधे का उनको था, उनको मालूम नहीं कौन सा धंधा है जो, तो लोगों को पता नहीं इसलिए वो ऐसा सोचते थे, और वो उनका अपमान कर लिया, ये बेकार है, इससे हाथ से कुछ काम नहीं होगा, ये बेकार है। बरे झाले देवा बाईल मेली, देखिए इट इज गुड दैट माय वाइफ डाइड, यू नो Nobody says that. पर तुकाराम है saying, अच्छा हो गया मेरी पत्नी मर गई, पहली पत्नी जो मर गई, और बरे झाले देवा पोर मेले, ये माय सन ऑल्सो डाइड, यू नो पीपल विल थिंक, इतने लोग सोचेंगे अरे क्या ये हार्ड हार्टेड पर्सन है, बोलता है अच्छा हो गया मेरी पत्नी मर गई, अच्छा हो गया मेरा धंधा खराब हो गया, अच्छा हो गया मेरा अपमान हो गया, अच्छा हो गया मेरा बेटा मर गया, ऐसा कोई बोल सकता है क्या, नहीं बोल सकता है। इसीलिए तो ये वेरी विशेष है, ऐसा चर्चा ज्यादा पब्लिक में नहीं करते हम लोग, लेकिन ये क्यों बोल रहे हैं कि बरे झाले देवा वाईल मेली देवे माया सोडविली, देखिए कृष्णा फीड मी फ्रॉम माय बिगेस्ट इल्यूजन, भगवान ने मुझे सबसे बड़ी माया से छुड़वाया। पत्नी को कहते माया है, ऐसा आप नहीं बोलना, कोई गृहस्थ बैठे है तो घर में जाके, तो पत्नी को कहते कि भगवान को कहते मेरे भगवान ने मुझे माया से छुड़वाया, ये मेरा बेटा मर गया और मेरी पत्नी मर गई। तो देखिए ये इनका साक्षात्कार है, तो मतलब ये कौन से कॉन्शियसनेस में है, ये भौतिक दुनिया में है ही नहीं। और वो कहते हैं कि अपने ऊपर कृष्ण की कृपा कैसी हो गई, हो रही है नहीं, ये कैसे समझना चाहिए। प्रभुपाद तो एक फेमस अपने जीवन का श्लोक बताते हैं, यस्याहम हरिष्यामि तरस्य हरिष्याहम अनुग्रहयामि हरिष्ये तद्धनम चाहिए, तो मतलब भगवान सब कुछ निकाल लेते हैं, ये एक सेंटेंस में बताया है शास्त्र में, भागवत में, और प्रभुपाद ने बताया। तो तुकाराम इसके ऊपर डिटेल बताते हैं कैसे समझना चाहिए मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो रही है। तो देवाचीते खूण, मतलब इट इज अ साइन दैट कृष्णा इज बिकमिंग मर्सीफुल टू यू, त्याचा घड़े चिरा संसारासी, हिज मटेरियल लाइफ इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉइड, दिस इज द साइन ऑफ कृष्णास मर्सी, कृष्ण का देवाचीते खूण, ही सेड व्हाट इज द साइन, करावे वाटोले, ही कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज युअर लाइफ, यू नो आपना वेगड़े राहू नदी, लेकिन वन थिंग He don't allow you to stay away from him. अपने भक्त को अपनों से ज्यादा भगवान अपने से दूर नहीं करते हैं। देवाचित खूण गुंतो ने दी आशा, ये भगवान की कृपा है कि इस दुनिया में हम कोई अपेक्षा नहीं रखते, कोई अपेक्षा नहीं रखते। ममते चा पाशा शिवो ने दी, मतलब वो यहाँ की जो रिलेशंस है ममता, उसमें जो क्या बोलते हैं रिलेशनशिप, अपने जो रिश्तेदार मित्र ऐसे क्या है ये संबंध को वो भगवान जो है आपको अड़कने नहीं देंगे। देवाची तो खूण गुंतु निधि वाचा, कहते हैं कि ये कृष्ण की कृपा ये है कि अपना मुख, तुम्हारा मुख कृष्ण के बिना दूसरा कुछ भी नहीं बोलेगा। गुंतो निधि वाचा मतलब आप दूसरा कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी वाचा केवल कृष्ण के बारे में ही बोलेंगी। लागो असत्याचा मळ निधि, आपका पूरा जीवन सत्य वचनी होगा। देवाची ते खूण थोड़ी माया जाळ, ओ ही कट्स ऑल द इल्यूजन, आपका सब माया का जाल जो है भगवान की कृपा से नष्ट हो जाता है। आणि हे सकल जगह हरी, यू विल सी एवरीथिंग इन रिलेशन विद कृष्णा, आप सब दो आपके सामने हैं, सब बंधन छूट गए तो कैसा देखेंगे, एक ही बंधन, एक ही जो सही चीज है कृष्ण के संबंध में आप देखोगे। तो ही इज प्राउडली सेइंग, सी ऑल दी साइंस आर विजिबल इन माई लाइफ एंड दिस इज, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ तुका, दिस इज माई स्ट्रेंथ, ये मेरा शक्ति है कि ये सब मेरे जीवन में हुआ, ये सब भगवान की कृपा से हो गया और ये मेरा क्या है, शक्ति है। तो ये देखिए, बाहर के लोगों के लिए बोलेंगे तो डर जाएंगे सब लोग, तो इसलिए ये उनका भावना है, कितना उच्च भावना है, मतलब यहां रहकर भी, और जब ये सब नुकसान हो गया धंधे में, ये उनका रियलाइजेशन है, और इसके बाद वो जाते हैं देहू में। तीन पहाड़ है, एक जो मुंबई हाईवे पे लगता है गोरावड़ी कहते हैं, दूसरा भंडारा जहाँ सब लोग जा सकते हैं, तीसरा है भामगढ़, वहाँ पर ज़्यादा बहुत मुश्किलें जाने के लिए। ये तीनों जगह जाके तुकाराम जो है गीता भागवत का पठन करते थे, रामायण महाभारत सुनते थे, जपा करते थे और दुनिया से अलग रहते थे, और इसलिए उनकी पत्नी संतुष्ट नहीं थी। और इस नुकसान जब हो गया सब, तब उन्होंने सोचा कि जब तक भगवान मुझे आदेश, आगे का आदेश नहीं देते हैं, तब तक मैं जाकर इस भामनाथ जो भंडारा ने, भामनाथ जो है भामरा कहते हैं उसको दूसरा नाम, वहां जाके क्या करूंगा, मैं पूरी प्रकार से भगवान से ध्यान लगूंगा, ध्यान भगवान पर ध्यान लगाऊंगा। तो उसके बारे में एक अभंग है जो स्वयं लिखते हैं, क्या परिस्थिति थी, 15 दिन वहां उस पहाड़ पे बैठे हैं, आज भी उस पहाड़ पे एक तो हम जा नहीं सकते, इतना ऐसा सीधा है और बहुत से हिंस्र पशु है, सांप है, हम एक किताब लिख रहा था तो वहां मैं 2-3 दिन रहने के लिए गया था, इतना डरावना है, तो कोई ब्रह्मचारी रहते वहां तो उनके साथ में रहा था, वर्कर ही रहते हैं, तो ये लाइट भी नहीं है उधर आज भी, तो बहुत डरावना है, फॉरेस्ट है एकदम थिक फॉरेस्ट। तो ये 400 साल पहले उस समय की बात है, तुकाराम महाराज अपना रियलाइजेशन लिख रहे हैं कि कैसे उन्होंने भगवान का ध्यान किया। तो हम भी ध्यान करते हैं तो थोड़ी सी तुलना करना, कैसे हम भगवान का उन्होंने ध्यान किया और हमारा ध्यान कैसा रहता है। 15 दिशा माजी जाला साक्षात करे, आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद मुझे भगवान का दर्शन हुआ। तो भामगिरी पाठारी वस्ती के लिए जाना, वृत्ति स्थिरावली परब्रह्मी, मैं भामगिरी पहाड़ पे गया और मैं फुल अटेंशन, मेरा पूरा ध्यान जो है भगवान के लगा, ध्यान भगवान में लगाकर वहां मैं बैठ गया। तो निर्वाण जाणोनी आसन घातले, ध्यान आरंभिले देवाचीचे, मतलब मैं दृढ़ निश्चय से वहां भगवान का ध्यान करने के लिए बैठ गया, दूसरा कुछ चिंता नहीं, ना नींद की चिंता, ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, 15 दिन कंटिन्यूअस ध्यान कर रहे हैं। और ये देखिए अभी कैसी परिस्थिति है, सर्प विंचू व्याघ्र अंगाशी झोंबले, पिड़ू जे लागले सकली का, मतलब मेरे शरीर पे सर्प घूम रहे थे और विंचू, क्या बोलते उसको, बिच्छू और बिग एंड्स, मराठी में डोंगला कहते हैं उसको, बड़े बड़े गोंगड़े मराठी में कहते, हिंदी में क्या कहते, बड़े बिग एंड्स, चीटी बड़ी चीटियां, ये तीनों मेरे क्या शरीर पे तकलीफ दे रहे थे, पीड़ा, ऐसा नहीं कि वो खाली खेल रहे थे, तो पीड़ा पीड़ू जे लागले सकड़ी का, और सामने शेर आ ऐसा करके खड़ा हुआ है, इस परिस्थिति में जाप कर रहे हैं। देखो इस परिस्थिति में ध्यान कर रहे हैं भगवान के ऊपर, तो हमारा अटेंटिव जब देखिए कितना है। तो ये ऐसे 15 दिन, ऐसा नहीं 15 मिनट के लिए बैठे, 15 सेकंड के लिए बैठे, 15 दिन ये सब सर्प विचु गाघ और चीटियां ये डांट रही है, डट रही है, डांटी तो अच्छा है, डट रही है, ये सब डांट रही है, फिर भी ध्यान जो है, मतलब देखिए कितना सेल्फ रियलाइजेशन, मैं ये शरीर नहीं हूं, इसका कितना क्या बोलते हैं उसे अनुभूति होनी चाहिए, ये सब, और ये लिखा है, ऐसा नहीं है कि दूसरे किसी ने लिखा है, स्वयं उन्होंने लिखा है, और ऐसे तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, इतना तो विश्वास होना चाहिए। तो तो ऐसे तुकाराम कहते हैं कि मैं इतना दीपक कर्पूरी, मतलब कापूर जो है दीप जब लगाते उसमें जल जाता है, उसी प्रकार सच्चिदानंद, मैं इतना सच्चिदानंद मेरी भावना हो गई, तो जो सच्चिदानंद का चिंतन चिंतन करके करके मैं भी इतना सच्चिदानंद हो गया, जैसे कर्पूरी, मतलब कर्पूर जो है दीपक, वो दीपक से जल जाता है, तो मतलब हमारी पूरी इच्छा जल जाने के बाद, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, शरीर के ऊपर जितनी आसना है, वासना है, आशा, ये सब जल जाने के बाद हम ये सच्चिदानंद स्थिति पे आते हैं, ये ध्यान है। तो ये इस प्रकार का ध्यान तुकाराम महाराज ने किया। तो ये क्यों बताने की जरूरत है, क्योंकि वो किस भावना में थे और उनका अनुभव क्या था। तो जब इसके बाद तुकाराम भगवान जो है स्वयं आते हैं और उनको कहते हैं कि अरे जिस जिसके लिए आपने अवतार धारण किया, जिसके लिए मैंने आपको भेजा है, वो प्रचार आप करो। और तब से वो घर जाते हैं कि आप घर में जाओ, अपने पत्नी बच्चे के साथ रहो और ऐसा गृहस्थी में रह के प्रचार करो। तो तब वो आते हैं और प्रचार करने लगते हैं। तो उनका भावना क्या है प्रचार करते समय, कोई भी उनको पूछेगा कि महाराज कहाँ जा रहे हो, कहते कि मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, वो नहीं कहते कि मैं पूना जा रहा हूँ, नहीं कहते थे कि मैं आणंदी जा रहा हूँ, मैं लोहगा जा रहा हूँ, और तुकाराम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पूना, पूना से पंढरपुर, इतना ही गए हैं, लेकिन गोपियों के रहस्यमय लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं देवों में बैठ के। वृंदावन एक भी दिन गए नहीं, वृंदावन को कभी नहीं गए, पंढरपुर ज्यादा देहू यही उनका कर्मक्षेत्र रहा। फिर भी देखिए कैसे प्रभुपाद कहते हैं वृंदावन इज इन योर हार्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस वृंदावन को जानना, हमारे हृदय में जो वृंदावन है, तो तुकाराम की गौरणिया है। तो ये मतलब गोपियों का कृष्ण के साथ व्यवहार कैसे होगा, बहुत वेरी वेरी डीप रियलाइजेशन, बहुत ही रहस्यमय ऐसे साक्षात्कार उन्होंने लिखे हैं गोपियों का और कृष्ण के भावना में। और ये भी कहते हैं कि अगर आपको कृष्ण को जानना है कि ब्रह्मादिकासी देवगो अगोचर, ब्रह्म शिव इंद्र ये बड़े बड़े देवताओं को भी अगोचर कृष्ण समझ में नहीं आएंगे और नहीं आए, तो अगर आपको कृष्ण को जानना है, वो कहते हैं जानवेल देव गौड़ी अंच भावे, मतलब आपको भगवान आप कैसे समझेंगे, जब आपका भाव गोपियों के जैसा होगा, तो उनके गोपियों के दास 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 दासान उदास बनना चाहिए, तब हमको कि कृष्ण कौन है ये पता चलेगा। ब्रह्मा जी को भी पता नहीं चलता है, इतना चार मुख से चारों वेद जिन्होंने लिखे हैं उनको भी पता नहीं चलता है, लेकिन गोपी भाव से, तो इस भावना में स्वयं जब तक नहीं है तो वृंदावन कैसा लिखेंगे। तो ये इस शरीर में भी रहकर उनकी भावना है। और बाद में और एक इंस्टेंस में यहाँ पुणा में जब छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ तुकाराम का कीर्तन चल रहा है वहाँ पर आते हैं, तो मुगलों को समझ में आता है, तो उस समय तुकाराम महाराज, बड़ा अभंग है लेकिन उसमें से एक सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, की आपुले विस्मरण हेच आम्हा मरण, न बजावा क्षण एक वाया। वो कहते हैं कि हम मृत्यु से नहीं डरते हैं, हमारे लिए आपका विस्मरण ये मृत्यु से दुख से भी ज्यादा है। एक क्षण का विस्मरण, एक क्षण का विस्मरण, हम मृत्यु से नहीं डरते हैं लेकिन आपका विस्मरण जब होता है ऐसा इतनी वेदना हमें होती है कि मृत्यु से भी ज्यादा वेदना है आपका विस्मरण जो है। इसीलिए न बजावा क्षण एक वाया, इसलिए भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा एक क्षण भी आपके चिंतन से बिना जाने मत देना, ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के पास। तो ये उनका भाव है। बाद में एक बार पत्नी को उपदेश कर रहे हैं, जैसे 36 अभंग है, वो अपनी पत्नी को उपदेश कर रहे हैं। उसमें से एक सेंटेंस में बताते हैं कि मेरे लिए मेरी पत्नी और मेरे बच्चे ही संसार नहीं, पूरी दुनिया मेरा कुटुंब है। क्योंकि जब से मेरा संबंध कृष्ण से प्रस्थापित हुआ है तब से उनके दृष्टि से मैं दुनिया देखता हूं, और इसलिए सब पूरा जगत, सब जीव मेरा कुटुंब है, मेरा फैमिली है। ये वैष्णव उच्च अधिकारी इसका सब जो है कृष्ण के संबंध में देखते हैं। तो ऐसी भावना से जो रहे हैं, तो जहां भी जाए तो कोई भी पूछे तो कहां वैकुंठ जा रहे हैं, वैकुंठ जा रहे हैं। तो व्हेन ही वॉज 41 ईयर्स, 41 बरस के थे, तो कृष्ण होली पूर्णिमा के दिन, मतलब गौर पूर्णिमा के दिन उनके स्वप्न में आके उनको दृष्टांत दिया कि तुकाराम जिस कारण से मैंने आपको यहां भेजा है और जिसकी वजह आप यहां आए थे वो आपका कार्य हो गया। अगर इससे ज्यादा आप इधर रहोगे तो लोग, पीपल विल नॉट टेक यू सीरियसली, मतलब लोग आपको क्या बोलते, सीरियसली गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि अति परिचयात अवज्ञा। तो आपको अति परिचित हो गए आप, तो ज्यादा आपको क्या हो जाएगा, लोग जो है आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका जो वैल्यू है वो नहीं रहेगा। आपको मैंने भेजा था तो आप मेरे नाम का आपने प्रचार किया, हरि कथा का आपने प्रचार किया, अपने जीवन से भगवान की कृपा क्या है ये दिखाया, और आपके अभंग जो है ये पूरी दुनिया को आगे की बरस, आगे का समय जो है सबको प्रेरित करते रहेंगे। क्योंकि जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि आई विल नेवर डाई, आई एम ऑलवेज प्रेजेंट इन माय बुक्स। तो ये तुकाराम को भगवान कहते हैं कि आपने अभंग, मतलब आपकी शिक्षा जो है केवल आपके अभंगों से नहीं, आपके जीवन से भी शिक्षा दी है, तो आपने दोनों भी किया है, तो अभी यहां मत रहना, अभी चलो। तो इसका आदेश सुनकर तुकाराम बता दे कि मुझे अभी बुलावा आ गया है और भगवान मुझे बुला रहे हैं। तो दूसरे तीसरे दिन जो है तुकाराम बीज, ये जगन्नाथ मिश्रा की बात का जो दिन आता है वो तुकाराम बीज, तीसरे दिन फाल्गुन वद्य द्वादशी। तो ये इस दिन सुबह जो भगवान कीर्तन करते हैं, और तुकाराम जब भी कीर्तन करते थे वहां हजारों लोग आते थे, लेकिन तुकाराम ऐसे अभंग गा रहे हैं, उसको पारकिर संप्रदाय में निर्वाण का अभंग बोलते हैं, मतलब जाते समय तुकाराम बता रहे कि मैं जा रहा हूं अभी। तो सब लोग जो है जा रहे हैं, तो पत्नी को भी बोलते हैं कि मैं वैकुंठ जा रहा हूं, तो उसको लगता है अरे तो हर दिन बोलते रहता है इसमें नहीं क्या बात है, कहा भी पूछो बोलता है मैं वैकुंठ जा रहा हूं। गांव के लोग भी सोच रहे हैं, अरे सबको बोल रहे हैं कि मैं वैकुंठ जा रहा हूं, तो गांव के लोग भी ऐसे ही सोचते हैं ये तो हर रोज बोलते रहता है इसमें क्या नई बात है। लेकिन उस दिन उनका जो भाव जो है एक अलग ही था, उसके एक विशेष आनंद उनके शरीर पे था, विशेष आनंद उनके मुख पे था। और ये सब कैसे मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, भगवत धाम मैं कैसे जा रहा हूं, इसके बारे में वो अभंग बोल रहे हैं। और जाते समय बोलते हैं कि घरेची दारेची भजा पांडुरंगा, वडिलांसी सांगा दंडवत। तो देखिए सब लोगों कहते हैं कि आप घर में रहो या बाहर रहो, भगवान का नाम लेते रहो, और जो भी मुझसे सीनियर है, जो भी मुझसे बड़े, ऐसा मेरा दंडवत उनको कह देना अगर वो इधर नहीं है। मदाची ये गोड़ी मासी घाली उड़ी, गेली आती घड़ी पुना नहीं है, ये इंडिकेशन दे दिया। क्या कह रहे हैं कि जैसे मक्खी जो है ये हनी शहद के पास जाती है, वहां वो क्या करती, वापस नहीं आती है। मदाची ये गोड़ी मासी घाली उड़ी, मतलब शहद को, शहद का आकर्षण से जब मच्छी जाती है तो उधर ही अटक जाती है, उससे बाहर नहीं आती है। गेली आती घड़ी पुना है, वो उधर जाती, वो अटक नहीं जाती है। वैसे मैं जा रहा हूं, वापस नहीं आऊंगा। गंगेचा हा ओघ सागरासी गेला, जैसे गंगा सागर को मिलती है, वैसे मागे नाही आली कदा काली, वो गंगा आपको कभी वापस आती हुई नहीं देखेंगी। कुंती महारानी यही प्रार्थना कर रहे हैं ना, गंगे वो गम उदानवी, तो मेरा ध्यान ऐसा रहने दो गंगे की तरह, मतलब आपके चरणों पे जाता रहे, वापस इस भौतिक दुनिया में नहीं। हमारा कभी कभी जप के समय आता है, थोड़ा गंगे जैसे जाता है, बाद में पूरे गटार गंगा में आ जाता है, फिर से इस भौतिक दुनिया में जाता है। लेकिन ये कुंती भी प्रार्थना या तुकाराम भी वही, मैं मेरा ऐसा भाव ये है गंगेचा ओघ, मैं अभी मेरी भावना जो है गंगा की तरह, मेरा जीवन ऐसा है उसी प्रकार, अभी क्या है मागेन, अभी पीछे आने का नहीं है। आइसिया गोष्ठी ची वरी राखा सोये, ये समझ के रखो, ये मैं फिर से वापस नहीं आऊंगा। ऐसे बहुत से अभंग है, मेरा टाइम पहले ही खत्म हो गया, अभी आ गए हैं मंदिर से कीर्तन करके करके करके, अभी ऐसा कह के अभंग बोलते बोलते ही आ रहे हैं। तुकाराम महाराज का ऐसा था कि ऐसा नहीं कि वो लिखते थे 15 मिनट सोच के एक लाइन, ऐसा नहीं, सहज बोलने हाथ उपदेश, तो तुकाराम महाराज के उनका ही अभंग है, जब बोलते थे वो अभंग रूप में ही बोलते थे, ऐसा नहीं अभंग रूप में ही। तो मंदिर से जो बाहर निकले और वो आ रहे हैं, तो उनके पीछे सब भक्त लोग आ रहे हैं, और आते आते देख रहे, देखिए 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 कि पहला आ रहे हरि, पहला मतलब क्या है, इंद्रायणी नदी है पहला, उससे परे देखिए देखिए हरि मुझे लेने के लिए आ गए हैं। उनके शंख चक्र उनके हाथ में है, गरुड़ फड़त्कार मतलब गरुड़ जो है उनके पंख हिला रहे हैं, मुकुट मंडलाचा दीप्ति मतलब उनके मुख पे मुकुट है, ऐसा सुंदर वर्णन किया है। और कहते हैं कि तुकाराम के ऊपर संतुष्ट होकर स्वयं वैकुंठपति मेरे लिए आ रहे हैं, ये अभंग है। अमी जातो आमचा गावा, लोकनाथ महाराज जिसको बहुत बार बोलते हैं कि मैं अभी हमारे गांव जा रहा हूं। हमारा गांव कौन सा है, वैकुंठ। ये कहा कैसे, इससे पहले का अभंग देखिए मैंने बताया, अमी वैकुंठवासी, तो यहां समझते हैं कि कहां से आए, अमी जातो आमचा गावा, उन्होंने देहू में आए, लेकिन कभी ऐसा नहीं बोला कि माय एड्रेस इज देहू, आमचा गावा, अमी चाल लो आमसा राम राम घ्यावा गुड बाय, तुमची आमची हेची भेटी येथुनिया जन्म ज्योटी, 41 years 41 बरस तक मैं आपके साथ रहा, लेकिन अभी हम आपके नजर से दूर जा रहा हूं। आता आसो देवी दया, जो भी वहां पर खड़े हैं सब वैष्णवों को कहते हैं मेरे ऊपर आपकी दया रखने दो, मैं आपको चरणों के स्पर्श करता हूं, आपका आशीर्वाद मुझे दीजिए। येता निज धामे कोणी विठल विठल मणा, कहते हैं कि मैं जा रहा हूं लेकिन निज धाम को, ऐसे नहीं कि मैं ही जा रहा हूं, मेरे जैसा किसी को आना है, अगर निज धाम में किसी की आनी इच्छा है, वो कहते हैं कि विठल विठल बोलावाणी खिली आपके मुख में कायम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, आपके मुख में ये कायम आपको हरे कृष्ण महामंत्र रहना चाहिए। रामकृष्ण मुखी बोला तो का जातो वैकुंठाला, कह रहे मैं जा रहा हूं अभी, रामकृष्ण आपको मैं इस हरे कृष्ण महामंत्र जब आप स्मरण करोगे तो आप भगवान आपके साथ है, उसी भगवान के साथ मैं वैकुंठ जा रहा हूं। इसलिए पहला अभंग फिर से महत्वपूर्ण है, हम ही वैकुंठवासी यहां जा रहे हैं, तुका जातो वैकुंठाला। और उसके बाद स्वयं भी बताते हैं कि ऐसा कर रहे हैं तो स्वयं भगवान गरुड़ जी आ गए। और गरुड़ जी को एड्रेस पहले मालूम था देव किधर है, क्योंकि पहले एक बार गरुड़ जी आए थे कि तुकाराम महाराज एक बार जा नहीं पाए अपने पंढरपुर यात्रा में, तो तुकाराम बीमार थे तो एक भक्त के साथ उन्होंने खत लिख के भेजा था पांडुरंग को, तो उस समय गरुड़ आया था तो उनको जीपीएस की जरूरत नहीं थी, उनको मालूम है कहाँ है, सीधा आ गए थे। तो हमारे जीपीएस का दूसरा मालूम है, जीपीएस मतलब गुरु परमात्मा और साधु, तो ये भगवान का जीपीएस ये है, गुरु परमात्मा और साधु, गुरु साधु शास्त्र। तो ये गरुड़ जी आ गए और तुकाराम सबके सामने, सब भक्त जोर से कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सबके सामने उस गरुड़ पे बैठ गए और सब लोगों ने देखा। और इससे सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस कौन सा है, किसका है, वो रामशास्त्री का है, जो पहले द्वेष करता था, तुकाराम के अभंग उन्होंने आनंद डोह में डुबवाए थे, ये ब्राह्मण का अभंग है कि मैंने मेरे आंखों से देखा तुकाराम स्वयं गरुड़ पे बैठकर गए, ये उनका है। और आपको अगर ज्यादा ही सरकारी नोट चाहिए तो देहू में जाइए, उस काल में सरकार की भी नोंद है, वो गए कैसे गुप्त हो गए। तो संशय ने कोई अब ये दोनों भी बोल दिया, स्वयं तुकाराम बोल रहे हैं, द्वेष करने वाला रामेश्वर शास्त्री जब उनका भक्त बन गया वो भी बोल रहे हैं। और उसके बाद चरित्रकार लिखते हैं कि लाखों लोगों ने ये देखा, उनके सामने तुकाराम चले गए। अभी बस मेरे गुरु महाराज से एक सीखा है, अगर आपका विश्वास नहीं है फिर भी उसके ऊपर विश्वास रखो, बाद में आपको समझेगा। फिलोसॉफी के लिए इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड जस्ट बिलीव इट बिकॉज ही इज नॉट टेलिंग द लाई, शास्त्र झूठ नहीं बोलता, इतना विश्वास रखो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई शास्त्र तो विश्वास रखो, बाद में समझ में आएगा। तो ये तुकाराम महाराज का चरित्र जिसने लिखा है, महीपति कहते हैं जिस लोगों ने विश्वास रखा उन लोगों को ही समझ सकता है कि कैसे तुकाराम सदेह उसी देह से वैकुंठ गए। जो विश्वास नहीं रखेंगे वो शंका लेते ही रहेंगे, डाउट लेते ही रहेंगे। तो दो चीज है आपके पास समझने के लिए, विश्वास से समझेगा, वही भीष्म भी भागवत में कहते हैं कृष्ण, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है श्लोक, तो विश्वास से ही भक्ति में आगे ले जाती है, अगर विश्वास नहीं है भक्ति आगे नहीं लेके जाएगी। कम से कम शास्त्र के ऊपर विश्वास रखो और वो हमें भगवान की तरफ लेके जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई बेग माय फॉरगिवनेस फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजर्स, आई एम सॉरी आई वेंट 10, लेकिन दो चीज में बोलना है तो मैं दोनों चीज में सप्ताह कर सकता था एक एक विषय में, लेकिन फिर भी मेरे को 45 मिनट्स में करना पड़ा। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।